Thank you. अर्थ पुण्य पापाधिकार पुण्य पाप का अधिकार तथा अध्याय कठिन है। आश्रम तत्व का जहां रहे वहां कोई और पास की चर्चा नहीं करती। आचार्य अतुल्य देव ने जो टीका रची उसका नाम तत्वार्थ वाक्य। इसमें अभी जो समाचार में अपन पढ़ने जा रहे हैं उससे हट करके कुछ करते हैं, पर दोनों की दृष्टियों में यह समझ लिया जाए तो फिर उलझन नहीं होगी। इसलिए हमने सोचा कि दोनों बातें आपके सामने रखी है ताकि कोई भ्रम न रह जाए। इसमें तत्वार्थ वाचिक में तत्वार्थ सूत्र के छठे अध्याय का तीसरा सूत्र शुभ पुण्य क्या शुभ पाप के इस पर वाचिक लिखते हुए आचार्य अतुल्य देव ने लिखा है उभय मन पात्र पातंत्र हेतु अभिशिष्टम की चेत उभय मन पारतंत्र हेतु अभिशिष्टम की चेत इष्टानिष्ट निमित्त भेदा तद्भेद सिद्धे वाक्य जो महत्वपूर्ण वाक्य हो गए और फिर उसके ऊपर जो व्याख्याएं होती सूत्र तो मूल सूत्र है। अब सूत्र में से कई महत्वपूर्ण बातों को लिस्ट आउट किया जाता है निकाला जाता है तो वो जो महत्वपूर्ण वाक्य होते हैं उनको वार्तिक कहते हैं और वार्तिक पर जो व्याख्या होती है वो किसी का होती है। तो वार्तिक में आचार्य अपने लिख रहे हैं कि शुभ और अशुभ जो योग है वो पुण्य और पाप के कारण है। शुभ योग पुण्य का आश्रम है और अशुभ योग पापाश्रम है। यदि ऐसी शंका करो कि शुभ और अशुभ दोनों ही परतंत्रता के कारण है इसलिए समान है। शुभ और अशुभ दोनों ही प्रतंत्रता के कारण अर्थात संसार के कारण, क्योंकि मोक्ष जो होता है वो शुभ और अशुभ से न होते हुए शुद्ध भाव से होता है। तो शुभ और अशुभ ये दोनों प्रतंत्रता के कारण होने के कारण एक है। शुभ अशुभ है अशुभ शुभ अर्थात दोनों एक है। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं इष्ट और अरिष्ट निमित्त के भेद से शुभ अशुभ में पुण्य और पाप में भेद सिद्ध हो जाएगा। कैसे तो क्या मतलब शंका का ही थोड़ा सा खुलासा करें कि यथा निगलस्य तरणमयस्य अयस्य मयस्य आयसस्य च अस्वतंत्रीकरण फलं तुल्यं एक क्या विशेष है, जिस प्रकार जंजीर स्वर्ण की हो या लोहे की हो, फल दोनों का एक ही होता है कि जंजीर को जकड़ा हो बंधन को प्राप्त हो जाता है और स्वतंत्र होता है, परतंत्र होता है। इसलिए चाहे सोने की जंजीर हो या लोहे की जंजीर हो, फल की अपेक्षा से दोनों जंजीरें समान है। तथा शंका का शंका है, जिस प्रकार लोहे और सोने की बीड़ियां समान रूप से मनुष्य के बंधन व्यक्त करती है, उसी प्रकार पुण्य पापन चापना पातन के निमित्तम अवशिष्ट इति नाप संकल्प भेद युक्ते पुण्य पुण्य पाप भी समान रूप से आत्मा को बांधते हैं। क्योंकि देखिए बंधते ही तो दो हैं, पुण्य बंध और पाप बंध, तो जब ये दोनों ही बंधन रूप है, दोनों ही आत्मा को परतंत्र बनाने में निमित्त है, इसलिए इन दोनों देव कैसे कह सकते हैं, दोनों एक है। नाप तो संबंध भेद लेकर यहाँ पर भेद प्रभेद करना उचित नहीं है, पुण्य और पाप ऐसे दो भेद गलत है, दोनों एक है। इष्ट और अनिष्ट निमित्तों में भेद होने के कारण इन दोनों में पुण्य और पाप में भी भेद सिद्ध है। यह इष्ट गतिजात शरीर इंद्रिय विषयाद निर्भर सकम तत्पुण्य, जो इष्ट गति इष्ट जाति इष्ट शरीर इष्ट इंद्रिया इष्ट विषय आदि की रचना करने वाला धर्म होता है वो पुण्य है, और अनिष्ट गति जात शरीर इंद्रिय विषय आदि निर्भर सकम यह तक पापम इत्यादि वो भेद है, अयम भेद है। और अनिष्ट गति अनिष्ट जाति अनिष्ट शरीर अनिष्ट इंद्रिया अनिष्ट विषय आदि की रचना करने वाला जो होता है वह कर्म पाप होता है, इसलिए इन दोनों में भेद है। तत्र शुभो योग पुण्य से आश्रम, अब उनमें शुभ जो योग होता है वो पुण्य का आश्रम है, अशुभ पाप है और अशुभ है वो पाप का आश्रम है। अब ये कैसे होंगे, ये एक अपेक्षित कथन है, पर चूंकि समय का ग्रंथ है अध्यात्म की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर जो कथन काम हो रहा है वो उस कथन से हट करके है। तो आपको इतना पर ध्यान रखना है कि आगम दोनों में भेद को स्वीकार करता है, लेकिन अध्यात्म क्या करता है उसको अपन सुन ले जाए। अभी तो नील कर्म जो पात्री हुई पुण्य पाप रूप में प्रवेश, अब एक ही कर्म दो पात्रों का रूप धारण करके रंगमंच पर पुण्य और पाप के रूप में प्रवेश करता है। तदत कर्म शुभाशुभ भेद तो विकयता वह एक कर्म शुभ और अशुभ के भेद से विरूपता को प्राप्त होकर रंगमंच पर प्रवेश करता है, और उस दो रूप धारण करने वाले एक कर्म को व्यक्ति के निर्भर मोह प्रजा जिसमें मोह रूपी धूल को गला जा रहा है, ऐसा यह अवबोध सुधा प्रभा ज्ञान रूपी अमृत का पूर्ण जानते एक प्रबल प्रवाह को पूर्ण है, नदी को पूरा है। इसी प्रकार ये अपने अंदर में जो विवेक है, उस विवेक ज्ञान का जो पूर्ण प्रकट होता है, वह जो दो पात्र बनकर के एक कर्म है ना, पुण्य और पाप का रूप धारण करके, इन दोनों को ऐसे मिक्स कर देगा और भ्रमण से बाहर होकर के फेंक देगा। यानी इसमें समय काल ग्रहण को आचार्य अग्रेसन स्वामी ने एक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया। जैसे जीवा जीव आदि काल में जीव और अजीव एक बन करके आए थे, तो उस ज्ञान में विवेक ने उन करके दोनों को अलग कर दिया और ऐसा अलग किया कि अब शरीर और आत्मा को दुनिया अलग कर लेती। लेकिन ये जो तत्व विवेक था, इसने तो गुणस्थान को भी अलग कर दिया, राधा देव को भी अलग कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। सिद्ध अवस्था में जो भी जीव के साथ नहीं होता वो सब अलग कर दिया। इसके बाद फिर स्टेज खाली हो गया, मंच पूरा रिक्त हो गया। थोड़ी देर बाद क्या हो गया, कर्ता कर्म बनकर के आता है। जीव अजीव का कर्ता बनकर के आता है, जीव जीव का कर्म बनकर आता है। तो अजीव जीव का कर्ता बनकर के आता है, जीव अजीव का कर्म बनकर के आता है। तो उसको लोग ज्ञान उठ करके खड़ा होकर स्पष्ट प्रकट कराता है। नहीं, जो द्रव्य अपनी जिस पर्याय को रचता है वह उसी का कर्ता होता है और वह पर्याय उसका कर्म होती है। मिट्टी ने घड़ा बनाया, मिट्टी करता है और घड़ा कर्म है। आटे ने रोटी बनाई, आटा करता है, रोटी कर्म। और कोई उदाहरण दे सकते हैं, अपनी दो उदाहरण पर्याप्त है। इसी प्रकार दुर्गत परमाणु से कर्म की रचना हुई, तो दुर्गत परमाणु के कोई कारण धारण करता है और कर्म कर्म है। द्रव्य कर्म है, वो व्याकरण के हिसाब से उस कर्ता का कर्म हो गया। और जीव ने जो राधा ने की है, राधा ने कर्म हो गया, जीव राधा ने का कर्ता हो गया। ऐसा कर्ता कर्म का विभाग करके फिर कुछ भोक्ता की भी झलक दे दी, क्योंकि पर द्रव्य का भोक्ता कोई दूसरा द्रव्य नहीं होता, स्वयं द्रव्य अपने ही पर्यायों का अपने भावों का भोक्ता होता है। तो इस तरह वो कर्ता कर्म की व्यवस्था भी उस विवेक ज्ञान में स्पष्ट प्रकट कर दी और उसका पर्दाफाश कर दिया। जो वहाँ नाटक में वो करते हैं, जैसे कभी कोई सीबीआई डिपार्टमेंट वाले या फिर जासूसी लोग क्या करते हैं, किसी रहस्य का पर्दाफाश करना होता है, तो फिर जहाँ एकदम क्लाइमैक्स की स्थिति आ जाती है, जहाँ सब व्यवस्था चौपट होने वाली होती है, सब वो प्रकट होकर के धीरे धीरे उसमें से एक एक कर निकाल करके पूरे सत्य को सामने कर डालते हैं और उनको बंदी बना करके अंदर बिहाइंड द बार शराबों के पीछे जेल के अंदर पहुंचा देते हैं। तो इसी प्रकार ये अब तीसरी बार, पहली बार तो जीवन रची नहीं बन करके आ गए, दूसरी बार कर्ता कर्म बन करके आ गए, तो इन सबको उन्होंने अंदर डाल दिया। अब तीसरी बार उसको ऐसा लगा कि हम दो बन करके आते तो फिर ये पकड़ लेते हैं, हम एक बन करके आते तो पकड़ लेते हैं, अब यहाँ पर एक ही दो बन करके आ गए। तो फिर भी ये जो ध्यान का अमृत फूल है वो इन दोनों को एक बनाता हुआ कहीं से कहीं बाहर निकाल देता है। एको दूरा त्यजति मदिरां ब्राह्मणस्याभिमानां दन्यशूद्रः स्वयमहमिदिस्नातिनित्यन्तैः वामक्तेन युगपदुरा नृत्यकरोशुद्धिकाया शुद्रो साक्षादश्चैको जातिभिन्नभ्रमीः। एक शुद्ध कुंडली माता है, जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और बच्चे बड़े सुंदर है, पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि दो बच्चों को पाल सके। दोनों बिल्कुल एक जैसे रहते थे, उसने सोचा कि चलो अपन एक में संतोष करें दूसरे को अलग कर दें, लेकिन माँ का हृदय है कि दूसरे को मार तो सकती है, तो वो कहीं ऐसे स्थान पर छोड़ देती है जहाँ से कोई सज्जन मनुष्य उसको उठाकर उसका लालन पालन कर दे। आचार्य अमृतचंद स्वामी दीक्षा दे रहे, इसलिए एक ब्राह्मण को वो बालक प्राप्त होता है जो सोचता है कि किसका बालक है। जाति कुल की मर्यादा का ध्यान तो रखते हैं मनुष्य सामान्य में, लेकिन जब बहुत समय तक घर पे संतान नहीं होती तो फिर वो एडाप्ट करने के लिए सोच लेते हैं, क्योंकि वो सुना का मुझे सहन नहीं होता, फिर वो सोचते हैं कि भाई यार नहीं किसी को रहते अपन अच्छे संस्कार देंगे तो अच्छा इंसान बनेगा, ये सोचकर जो ब्राह्मण उस बच्चे को उठा लेता है अपने घर लाकर उसको संस्कारित करता है। तो वो एक बालक है जो ब्राह्मण के यहाँ पला है और वो दूसरा है जो खुद अपनी माँ के सामने साथ रहता है और वही पला हुआ है। तो देखो दूरा कैसे ही बनेगा ब्राह्मण क्या है बालक, वो जो एक है उसको इस बात का अभिमान नहीं देना ब्राह्मण है और वो दूर से मदिरा में छोड़ देता है, मदिरा घर में भी प्रवेश नहीं कर सकती शराब, उसको बिल्कुल दूर से छोड़ देता है। और अन्य है पाऊ स्वयं शिल्चर इति कई घंटे पर जो दूसरा अपने घर पर बना हुआ है वो क्या सोचता है कि मैं तो शुद्ध करने वाला हूं, तो ये मान करके वो प्रतिदिन सुबह से शाम मदिरा पान करता है। एक प्रकार से कहते हैं इसको स्नाति नित्यंत आचार्य परिचय स्वामी कि वो शराब में नहाता है, द्वावक्तेतो किंतु ये दोनों ही युवकों को जरा मेरे गोषा एक साथ एक माह के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, साक्षात शुद्ध हो। और अगर देश पिंड की अपेक्षा से विचार किया जाए तो दोनों क्या है शुद्ध है, लेकिन अतुच्छ तो जाति जगत बने सिर्फ जाति के भेद का भ्रम होने के कारण दो स्थानों पर पड़ने के कारण भ्रम न हो इसलिए अलग अलग प्रकार का आचरण करते हैं। अब उसके बाद आचार्य कुलकुल स्वामी गाथा कहते हैं कम मधुर कुशीलम सुखम मन चाव जान सुशीलम कर्तम हो सुशीलम जन संसार पड़े। अशुभ कर्म को सुशील अर्थात पुण्य नहीं, अशुभ कर्म को कर्म असुभ खुशी खुशी, अशुभ कर्म को खुशी खुशी का छीन का अर्थ है स्वभाव, तो कुशील का अर्थ होता है बुरे स्वभाव वाला, अशुभ कर्म को बुरे स्वभाव वाला और शुभ कर्म चाह जाना सुशील और शुभ कर्म को सुखशील सुंदर स्वभाव वाला शीलदार स्वभाव वाला, शुभ कर्म को शुभ स्वभाव वाला सुंदर स्वभाव वाला जान जानता है और ये जगत। अर्थात सीधी सीधी बात ये हुई कि पाप के फल को बुरा मानना है, पुण्य के फल को अच्छा मानना है। आचार्य कुंदन स्वामी कहते हैं कि शांत मन से विचार करके रखना कि हम उसे सुशील कैसे कहें, हम उसे सुंदर स्वभाव वाला कैसे माने, जन संसार पवे थी जो संसार में प्रविष्ट कराता है। ये यहां समझ में नहीं आएगा इसकी अनुभूति जिनको हुई है उनसे पूछने पर वो बता सकते हैं कि उन्हें क्या वेदना होगी। अभी क्या है, पाप की वेदना तो दुनिया जानती है पर पुण्य की वेदना केवल ज्ञानी जी जानते हैं। वो कैसे, उसका दृष्टांत सुनिए। जब श्री कृष्ण जी का अवसान हो गया और जगत कुमार ने जाकर पांडवों को समाचार दिया कि मेरे हाथ से इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई, बारह वर्ष का निर्णा प्रभु हो चुके, जगत कुमार के बाद श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण हुआ, वो सत्य हुआ और मेरे से अनजान में ऐसा हो गया, मैंने कुछ और समझ लिया और वो कुछ और गया और गला हाथ हाथ करके हमें मिलता था पांडवों की सभा में प्रवेश करके सामने लोग बोलते हैं ये कौन है, तो धनुष्मान लेकर गया है जयंती कुमार, तो वो बताता है कि मैं जगत कुमार हूँ, वसुदेव का ही पुत्र हूँ और ऐसी दुर्घटना घट गई। तो पांडवों में बड़ा खेद होता है, सबके आंखों में ऐसे रहते हैं माता कुंती द्रौपदी सब हमें लगते, तो बोले कि कहाँ है समय भैया राम बलराम कहाँ है, तो बोले बलराम कृष्ण को जीवित समझ रहे छोड़ी नहीं है और वो घटक है कृष्ण के साथ लेकर। पांडव लोग ढूंढते 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 बहुत मुश्किल से मांगी जी के आसपास हैं, ढूंढ निकालते हैं बलराम और कृष्ण, बलराम के पूरे बालों में धूल जमी हुई है, कपड़े एकदम मटमैले हैं, कोई उनको उठने पागलों के समान कृष्ण को ऐसे हृदय से लगाकर यहाँ वहाँ भटकते हैं। तो पांडव लोग उनको बहुत समझाते हैं कि जो भी एकदम हो गया उसका विनाश अवश्य भारी है, कोई वस्तु पर्याय रूप से शाश्वत नहीं रहती, बहुत समझाते हैं। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा उपदेश तुम मुझे क्यों दे रहे हो, बलराम बोलते कि ऐसा उपदेश तुम मुझे क्यों दे रहे हो, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ, तो मैं ही जानता है कि जो उत्पन्न होता है उसका मरण निश्चय, मैं सब जानता हूँ, तुम मुझे किस टाइप का उपदेश दे रहे हो, आप जिनको साथ में लेकर के घूम रहे हैं यदि आप ये सब जानते हैं अंतिम संस्कार कीजिए विलंब क्यों। बलराम से कृष्ण की तरफ देख कर बोलते हैं कि ये तुम लोग क्या कहते हैं, बलराम उसको कृष्ण की तरफ देख कर पांडवों से कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कहते हैं, मेरा कृष्ण सोया है और तुम लोगों को ऐसी अनिष्ट बात यहाँ आकर मेरे सामने चलो कृष्ण के बारे में, तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम अपने सारे कुटुंबों को बुला लो और फिर जितनी चिताएं बनाना है बना लो और सब एक एक चिता पर बैठ करके आग लगा दो, तुम मर जाओ तुम्हारे कुटुंब मर जाए लेकिन मेरा कृष्ण मिल जाए। ऐसा करते करते छह महीने बीत गए, फिर सिद्धार्थ नाम का कोई वीर जो पूर्व भूमि का साथी है बलराम के रथ का साथी वो वहां से आ सके, फिर अपनी विक्रिय शक्ति से अनेक प्रकार की माया करके बलराम को विश्वास दिला देता है कि सचमुच कृष्ण नहीं है और उस समय बलराम को वैराग्य होता है और उनका अंतिम संस्कार मांगी गिरी और तुंगी गिरी के मध्य में कृष्ण कुंड है वहां पर उनका अंतिम संस्कार है। देखिए इधर से राम मोक्ष है तुंगी गिरी से, मांगी गिरी से सीता जी की सहेखा हो और बीच में श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार है, वो चीज वास्तव में देखने लगे हैं मांगी तुंगी के दर्शन को जिनने न किया हो अवश्य कर रही है, पर अभी ग्रीष्म काल में करना बहुत कठिन है क्योंकि सीढ़ियाँ ऐसी कटती है कि अगर कोई चला गया है तो रोते रोते उठेगा, इसलिए भयंकर स्थिति हो जाएगी। और बड़ा पवित्र स्थान है, 10-20 किलोमीटर से पहाड़ियाँ दिखने लग जाती है, फिर अलग धर्म भी आती है, ऐसा लगता है कि हम कहाँ पहुँच गए, ये लगता है कि हम महाराष्ट्र में नासिक जिले में पैदल चल रहे हैं नेशनल हाईवे रोड,
तो एकदम अलौकिक लगना लग जाता है। 99 करोड़ मेरा नोटियों क्या आशीर्वाद, एकदम वो दृश्य स्मरण आ गया। हनुमान राम नील नल सुप्रीम सुनील गौ गवाक्ष ये सब वहां से मोक्ष। बलराम मुनि ने वहां से बलराम ने दीक्षा ली तो वही तपस्या की थी मांगी गई से। तो ऐसे प्रतिमा पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बलराम इतने सुंदर थे जो आज चलिया के निकलते थे, तो अगर कोई माता पानी भर रही हो साथ में बच्चे को लेकर, तो वो बाल्टी डालने के बदले बच्चे को अंदर डाल देते थे बलराम से उसे दिखते रहे। तो जब बलराम ने ऐसे दृश्य देखा तो उन्हें अपना कर दिया, उनको बड़ा बड़ी पीड़ा करूँ क्योंकि मेरा दयालु होते हैं, तो उनको इस अवस्था को देखकर बड़ी पीड़ा हो गई। फिर उन्होंने नियम लिया कि मुझे जंगल में मुझे आहार नहीं देगा तो ले लूंगा, शहरों में जाकर आहार नहीं लूंगा। इस पुद्गल के रूप को देखकर लोग विक्षिप्त हो जाते हैं और ऐसी अनेक चेष्टाएं करने लग जाते हैं कि जंगल में आहार नहीं मिलेगा। और फिर जंगल में भी जब लोग जुड़ने लगे तो उन्होंने मांगी गिरी पर दीवार की ओर मुख करके ध्यान लगाया। 100 वर्षों में जो तपस्या किए बलराम मुनि अवस्था में उसका विवरण आप हरिवंश पुराण कभी पढ़े रोकते पड़े। वो 6-6 महीने जब पद्मासन में बैठ जाते थे मौसम बदल जाते थे, ऋतुएं परिवर्तित हो जाती थी और सर्दियों में ऐसे कोहरा छा जाता था उनके आसपास, कंधों पर बर्फ फैल जाती थी। तो वहां से बलराम महामुनि ने वो प्रतिमा है जो दीवार की ओर ऐसे पीठ दिखती है पीछे ऐसे बलराम को याद गया। कुछ चर्चा क्या चल रही पुण्य की क्रिया। तो इस घटना को लेकर के पांडवों को वैराग हो जाता है और वो पल्लव पल्लव ऋषि ने याद होते मेरे जीवन के पास निर्भर स्थल अधिकार करके तो बिहार में जो है शत्रुंजय देवी पर पहुंचते हैं और वहां पर जिस पांचों पांडव ध्यान में अवस्थित होते हैं तब एक घटना लगे दुर्योधन का ढांचा कुर्ते पर पांडव पुराण में नाम कुर्ते न लिए कुर्ते पर उनको पहचान ले जाएगी ये हमारे शत्रु जिन्होंने हमारे पिता की पूरी पीढ़ी का सर्वनाश कर दिया, हमारे माता को भी साथ कर दिया, इन सब बड़ों में समय में उसका बैठ बहुत खास जाए। और फिर वो सोचते हैं कि अभी साधु है इसलिए हमें कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है इनके पास और मैं कुछ भी कर लूंगा तो ये कुछ कर नहीं सकेंगे। ऐसा विचार करके बदले की भावना से लोहे के मुकुट कटक बाजूबंद अंगूठियां पैरों के आभूषण कमर के आभूषण कंठाभरण गले के आभूषण इन सबको तैयार कराता और तैयार कराकर वहां ले जाता पहाड़ के ऊपर और पहाड़ पर ले जाकर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें उसको तपाता हूँ और जब वो तप करके लाल हो जाता है पूरे पूरे आभूषण तो पांचों पांडवों को वो सारे आभूषण पहन लेते हैं। और उस समय अर्जुन महामुनि की उंगलियों में जो अंगूठी पहना था तो वहां की त्वचा और वहां का मार उसे जल करके नष्ट होने लगता है। तो इतना धुआं निकल गया है कि पांचों पांडवों की आंखों के सामने पूरा धुआं धुआं भर जाता है और सभी पांडवों के शरीर जलना प्रारंभ कर देते और चारों ओर धुआं ही धुआं धुआं ही धुआं हो जाता है क्योंकि चमड़ी जब जलती है तो उसमें काफी धुआं निकलता है और वो सोचता है कि अब मेरा वह चिप गया मैंने बदला ढंग से ले लिया। लेकिन उन महामुनियों ने मन में विचार किया कि हमारे कर्मों जैसे ये उत्सव आया है और उस उत्सव में इतनी भी वेदना पर वेदना में दुखी होना हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम क्षमता धारण कर लें, शक्ति तो हमारे अंदर भरपूर है, तो यदि हम क्षमता धारण करते हैं तो कितना भी कष्ट क्यों हो जाए हम धर्म ध्यान में ही स्थित रहेंगे। हम जो ध्यान में नहीं जाएंगे, आप ध्यान प्रौढ़ ध्यान में जाएंगे ही, प्रौढ़ ध्यान तो वैसे ही योनि कर्म में समाप्त हो जाएगा, और आप ध्यान में बिना हमारा ध्यान नहीं होता है मुनि अवस्था में, पर हमें आत्मध्यान करना ही नहीं। वेदना है उसको जानते रहेंगे, मुझे वेदना हो रही है बहुत अनिष्ट है ऐसा विचारते थे, तो उस भयंकर वेदना को शरीर जल रहा है लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मन को शांत रखा, और मन को शांत रखने के कारण उनके कर्म जैसे शरीर के साथ जाते नौकर ग्रह और कर्म जैसे, लेकिन आत्मा सुरक्षित रहेगी, उनके पर्याय उनके भाव निर्मल रहे हैं, और भाव निर्मल रहे हैं तीन पांडवों को सपक्ष लेकर आरोपण किए, मैंने भाग्य कर्मों का क्षय कर डाला, केवल ध्यान प्राप्त करके मोक्ष धाम को सिधार दें। तीन पांडवों युधिष्ठिर भीम और अर्जुन महामुनि निर्वाण को साथ हो नमो सिद्धांत। लेकिन दो पांडव नकुल और सहदेव ये शपक श्रेणी तक नहीं पहुंच पाया, तो इन्होंने उपशमक श्रेणी का आरोह किया और 11वें गुणस्थान में इनका प्रारंभ हुआ, और गुणस्थान कर्मदान में ईश्वर हुआ उपशांत घनश्रेण्याम दीशाम वृत्ति प्रजाए उपपाल भगवंते सर्वार्थ सिद्धि सद्मणि। ये दोनों सर्वार्थ सिद्धि चाहिए, सर्वार्थ सिद्धि विमान है देवताओं का अंतिम विमान, वहां 33 सागर की आयु होती है, तो नकुल और सहदेव महामुनि आज सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले अहमद पहले कोई दुख नहीं है, लेकिन जिस पुण्य ने उनको वहां रोक लिया सर्वार सिद्धि जाने वाला पापी तो हो नहीं सकता, महापुण्यशाली और सामान्य मुनिगुरु होते महामुनि होते जैसे सुकुमार महामुनि सर्वार सिद्धि वज्र नावी महामुनि जो बाद में आदिनाथ भगवान बनते वो भी सर्वार सिद्धि चाहिए, शांतिनाथ भगवान के अपने पूर्व मेघरथ मुनि के बजाय सर्वार सिद्धि गए वहां से आकर शांतिनाथ भगवान बने, कुंजनाथ भगवान अजितनाथ भगवान ये सर्वार सिद्धि जाने वाले बड़े महान तपस्वी साधु होते भावी महान है, और केवल वचन वृषभ नारायण सम्मेलन वाले ही जाते हैं सर्वार सिद्धि, छह सम्मेलन में से पांच सम्मेलन वाले मुनि सर्वार सिद्धि नहीं जाते, पर उनमें भी वेदना वो समझते हैं, वो किस रूप में देख रहे हैं ध्वनि की पुण्य के फल को, 33 सागर की कैद रहे कुछ सुन रहे ही ध्यान से, इधर उधर बिल्कुल मत सुना रहा कुछ भी विद्वान को सुनता हो बहुत पाप लगता है, उल्टे सीधे विचार कर रहे पूरे एक लाख रुपए में इसको सुनो क्या हुआ उनको इस बात का पता है कि 33 सागर कितने कठिन है, हमारे बड़े भ्राता निर्वाण को प्राप्त हो गए और हमें 33 सागर का कारावास प्राप्त हो, जिस संसार का एक उत्कृष्ट श्रेणी का पुण्य है जो सर्वार्थ सिद्धि ले जाने वाला है, लेकिन वो ज्ञानी जी जानते हैं कि ये पुण्य भी कैद है। एक वहां संजीव वाले कैद होती है और एक नजर कैद होती है, सुना आपको वो बाहर जा रहे हैं जैसे आप यहाँ पर चाय पियो नाश्ता करो टेलीविजन देखो कुछ भी करते हो लेकिन सारी निगरानी रहेगी आपके तो आप बंदी है एक प्रकार की और दूसरी कैद वो है कि आपको वहाँ जेल में चेक की पीस में पड़ रही वो पाप की कैद है ये पुण्य इसलिए आचार्य कुंदन स्वामी कहते हैं कि जगत अशुभ कर्म को बुरे स्वभाव वाला मानता है और शुभ कर्म को अच्छे स्वभाव वाला मानता है लेकिन हमारा आपसे ये प्रश्न है शांत मन से विचार करके इसका जवाब दो कि जो संसार में रोक कर रखता है 33 सागर का कारावास प्रदान करता है उसको हम अच्छे स्वभाव वाला कैसे कह सकते आचार्य अमृतचंद स्वामी है 4 बिंदुओं पर इसकी सिद्धि की है पहले उन्होंने पक्ष रखा है कि नहीं पुण्य पाप तो एक नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते क्योंकि शुभाशुभ जीव परिणाम निमित्त से यदि कारण होता है पुण्य शुभ परिणाम के कारण होता है पाप अशुभ परिणाम के कारण होता है तो दो परिणाम भिन्न भिन्न होंगे जब कार्य भिन्न है तो कार्य भिन्न होगा ही होगा ये एक हेतु कारण ये एक हेतु है तो दूसरा हेतु क्या पड़े शुभाशुभ प्रदत्त परिणाम में स्वभाव देगा शुभ रूप कर्ण देखो द्रव्य कर्म की अपेक्षा से विचार में है तो शुभ कर्म रूप कर्ण जो कारण वैगड़ा है वो पुण्य है और अशुभ कर्म रूप कर्ण जो कारण वैगड़ा है वो पाप है तो शुभ रूप कर्ण कारण वैगड़ा अलग स्वभाव वाली अशुभ रूप कर्ण कारण वैगड़ा अलग स्वभाव वाली है तो दोनों के स्वभाव भिन्न होने के कारण भी पुण्य और पाप भिन्न है ठीक है पहला क्या बात है कार्य भिन्न है होने से ये कार्य भिन्न है फिर स्वभाव भिन्न होने से ये पुण्य और पाप भिन्न है और तीसरा क्या जो है शुभाशुभ फल पाकत्व सति अनुभव देगा शुभाशुभ मोक्ष अनुभव देगा अब इन दोनों के फल भी अलग अलग होते हैं शुभ का फल भोगा जाता है और अशुभ का फल भुगतना पड़ता है बहुत ध्यान से नहीं है सारी बातें पता नहीं भविष्य में मिलती है कि नहीं शुभ का फल भोगा जाता है अशुभ का फल भुगतना पड़ता है तो जो फल ऐसे अलग अलग है तो वो कर्म ही कैसे हो सकते पुण्य और पाप एक नहीं है अलग ये तीसरा हेतु भी है कि फल का जो भोग है वो भिन्न है फिर चौथा हेतु क्या देना शुभाशुभ मोक्ष बंध मांगा शिव सत्याश्रय देगा शुभ जो फल वो मोक्ष मार्ग का आश्रय देता है और अशुभ जो होता है वो बंध का आश्रय होगा तो दोनों के आश्रय अलग अलग हो गए तो जब दोनों के आश्रय अलग अलग हैं तो दोनों एक साथ हो गए इसलिए भले कर्म तो कर्म है लेकिन एकम अपि कर्म किंचित शुभ कुछ शुभ है किंचित अशुभ भी कई शांत के लिए पक्ष है और कुछ अशुभ है इस प्रकार कुछ लोगों का मानना है सब प्रतिपक्ष है लेकिन ज्ञानी जीवों के लिए ये चारों तरफ बाधा सहित देखिएगा सुनिएगा अभी इसमें कितना जल्दी एकदम निश्चय मिलाया और कितने खुश हुए कि हाँ बिल्कुल अलग है उनके भाव बिल्कुल अलग है आए थे ना ऐसे भाव अब देखिए क्या कह रहे हैं तथा इसका स्पष्टीकरण शुभुर शुभुर वाला जीव परिणाम शुभ अथवा अशुभ ये जो जीव का परिणाम है शुभ अथवा अशुभ ये दोनों केवल अज्ञान में एक दोनों ही अज्ञान से उत्पन्न होने वाला है इसलिए एक
सुख का विकार ज्ञान है, अशुभ का विकार ज्ञान है, इसलिए दोनों सब एक अपने से दिया, दोनों एक है तो कारण और विकार एक हम कर कारण एक होने के कारण कर्म के एक हुए, पुण्य पाप एक हुए। अज्ञान क्यों कर्म का सुख, पुण्य का भी कारण अज्ञान और पाप का भी कारण अज्ञान, क्यों कैसे ये समझना भी आवश्यक है। तो आप कहोगे तो कि ज्ञान होने से तो पुण्य करेगा, अज्ञान हुआ तो पाप करेगा, नहीं वो बात बहुत पुरानी बात है, वो पहली कक्षा की बात थी, अभी यहाँ पर अपन बहुत आगे की कक्षा में पढ़ाई करते हैं। यहाँ क्या है अज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान का अर्थ होता है जानना, बिना किसी विकार के जानना वो ज्ञान, और राग द्वेष अगर उसमें मिश्रित हो जाए तो उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते, राग द्वेष से मिश्रित ज्ञान को यहाँ पर अज्ञान कहते हैं। तो पुण्य और पाप कैसे होते हैं, राग द्वेष से होते हैं या इनके बिना होते हैं, और इसका स्पष्टीकरण ऐसा है कि मंद प्रसार हो तो पुण्य होता है, तीव्र प्रसार हो तो पाप होता है, पर होता तो प्रसार है, कषाय ज्ञान भाव है या अज्ञान भाव, तो फिर पुण्य और पाप दोनों का कारण क्या हुआ, अज्ञान भाव, और कारण एक होने से दोनों एक होते, कार्य एक है, ये बात। अभी देखिएगा बहुत ज्यादा दिमाग मत चला, क्योंकि जितना बता रहे हैं गुरु उससे आगे अगर आपका दिमाग चलेगा तो आप पढ़ देंगे। अभी कुछ आपको क्या करना क्या नहीं करना ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ ये समझा रहे हैं कि तुम पुण्य और पाप इन दोनों से भी जरा ऊपर देखने का प्रयास करो। ठीक है पाप को तुमने बुरा समझा, पुण्य को अच्छा समझा, लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि पुण्य नहीं अंत नहीं है, उससे भी आगे कुछ है उसको देखो, जो नकल फैले को दिखाई दे तैतीस सागर तक सर्वान सिद्धि में रहना और मोक्ष में रहना इसमें कितना फर्क है, सर्वान सिद्धि की मोक्ष से कोई तुलना है, मोक्ष का जो आनंद अज्ञावाद सुख है उस सुख की तुलना में सर्वान सिद्धि का जो सुख है उसकी क्या गिनती है, कोई गिनती है नहीं, नहीं होती। तो नकुल सहदेव बता सकते हैं कि कितना दुखदायी है सर्वार सिद्धि में रहने, बाकी जिनको शुद्ध ही नहीं मिलता वो क्या बताएंगे इसके बारे में, जिनको आज के इंद्रिय सुख भी पर्याप्त प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनको तो लगे वाले पुण्य अच्छा है जिनको मिल रहा है उनको देख कर, क्योंकि नदी के उस तरफ की घास हमेशा हमेशा ज्यादा हरी दिखाई देती है, उस तरफ चले जाओ तो इस तरफ की हरी दिखती है, लेकिन है दोनों नदी के किनारे की घास दोनों एक। फिर क्या कहते हैं ये तो एक कारण में भेद जो था उसको निषेध कर दिया, लेकिन दोनों के कारण भिन्न नहीं है एक ही। फिर क्या कहते हैं शुभ शुभ का प्रकृत परिणाम केवल दुर्गल में प्रावेकस तब एक सभी स्वभाव भेदा स्वभाव भेदा एकण करो। फिर क्या कहा दूसरा हेतु भी होता है कि दोनों के स्वभाव होते हैं, क्योंकि जो कारण वगैरह पुण्यरूप परिणत हुई है उसका स्वभाव अलग है और जो पाप रूप हुई है उसका स्वभाव अलग है। आचार्य भी कहते हैं कि नहीं दोनों रचनाएं दुर्गल द्रव्यों की है तो दुर्गांश दो बार कर रहे हैं, पुण्य कर्म की रचना भी दुर्गल परमाणु से हुई है और पाप की रचना भी दुर्गल परमाणु से हुई है, इसलिए दोनों एक है, दोनों का स्वभाव एक है।
फिर तीसरा ये तो क्या कह रहे हैं कि दोनों के फल अलग अलग है, पुण्य का फल भोगा जाता है, पाप का फल भुगतना पड़ता है, दोनों के फल अलग अलग है, इसलिए दोनों अलग अलग है। तो आचार्य कहते हैं शुभ शुभों का फल पात्र केवल दुर्गल महत्व, शुभ कर्म का फल हो या अशुभ कर्म का फल हो, दोनों फल पुण्य से इंद्र में सुख मिलता है, पाप से इंद्र में दुख मिलता है, मिलता तो दुर्गल होती है, इसे दोनों का फल दुर्गल मह होने के कारण एक है दोनों, और इसीलिए तब एक दोनों में एकता होने पर अनुभव मिलेगा, दोनों का जो भोग है वो भी समान है, चाहे पुण्य का फल कोई भोगे चाहे पाप का फल कोई भोगते, दोनों निराकुल नहीं होते। क्या नाम पुण्य का फल भोगते समय भी आकुलता है, अलग टाइप की है आकुलता, और पाप का फल भोगते समय भी आकुलता है, एक का टेम्परेचर है 107 और दूसरे का टेम्परेचर है 100। लेकिन दोनों बीमार है, अभी 98.4 भी है, 98.4 वहां है, तो अभी दोनों बीमार है, इसको दोनों को स्वस्थ नहीं कह सकते, दोनों में टेम्परेचर कम ज्यादा होने में क्या फर्क पड़ता है, रोगी तो नहीं है। हाँ इतना जरूर है कि किसी अपेक्षा से दोनों को क्या असर होता है, जैसे 107 वाला जब 100 के आता है तो उससे पूछो कि कैसा लग रहा है, या वो अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है, इसका मतलब क्या है स्वस्थ नहीं है, उससे अच्छा है, लेकिन शरीर में अच्छा है क्या नहीं। इसी प्रकार ये कर्म रोग है, चाहे पुण्य हो या पाप हो, इसलिए कर्म को कभी भी अपना लक्ष्य मत बनाओ, लक्ष्य तो केवल मोक्ष, और मोक्ष को लक्ष्य बनाकर के आप चलते चले, पुण्य का बंद होगा कभी अशुभ काम होंगे तो पाप का भी बंद होगा, लेकिन उस पर ध्यान मत दो, आपको उधर ही ध्यान देना लक्ष्य पर, अगर पुण्य पाप को इष्टानिष्ट मान करके चले गए तो फिर मोक्ष छिल जाएगा, मोक्ष छिल जाएगा, इसलिए लक्ष्य मोक्ष क्या हो, पुण्य बंदे का फल मिलेगा लेकिन उसको फंसना नहीं है, आपको बढ़ते चले जाना। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं अंतिम जो चौथा हेतु बताया ना कि शुभ शुभ मोक्ष बंद मारे, शुभ जो है वो मोक्ष का मार्ग है और अशुभ जो है वो बंद का मार्ग है, तो प्रत्येक अंकिलो जीव दुर्गल है क्या अनेकों तब अनेक को सकते थे केवल दुर्गम में बंद मार्गाश्रय तत्व तत्व आश्रय अभियता एकदम कर आचार्य कुंदन स्वामी आचार्य अमृतचंद स्वामी यहाँ पर कह रहे थे काम कि शुभ और अशुभ को तुम मोक्ष और दंड का मार्ग समझे, और वास्तव में देखा जाए तो शुभ और अशुभ ये जीव और कुंडल इन मय होते हैं, मोक्ष मार्ग जो होता है वो जीव के आश्रय से होता है और बंध जो होता है वो कुंडल के आश्रय से होता है, तो पुण्य और पाप चूंकि दोनों बंध रूप है इसलिए शुभ और अशुभ ये मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग क्या है जीव का रत्नत्रय भाव, वो रत्नत्रय कर्माधीन है क्या, और वही है क्या कर्म के उदय से होता है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चरित्र नहीं, कर्मों को जीतने पर रत्न प्रकट होता है। इसलिए अक्षमाल जीवाश्रय है, बंद मार दुर्गाश्रय है। तो बोलो अलग अलग है और पुण्य पाप दोनों बंद है, इसलिए भी इन चारों में अभिन्नता होने के कारण कर्म में भिन्नता नहीं है। पुण्य पाप अभिन्न है, एक क्यों तब बंद मार्ग आश्रय बनेगा, तो दोनों बंद मार्ग के आश्रय है, क्योंकि पुण्य भी बंद है पाप भी बंद है। तो स्वयं समर्पण कर्म बंद हो गया, सब पुण्य पाप पुण्य बंद के कारण है। इसलिए कार्तिकेय अमावस्या में गाथा है, पुण्यं पितु समीहति संसारो देहिनी दुर्भूति पुण्यं सुमेह हेतु पुण्यकैरेव निर्वाणम्। जो पुण्य की आकांक्षा करता है वह संसार को चाहता है, क्योंकि पुण्य सब रतुल ले जाता है, मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है। और जब पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म पूर्ण ग्रह से नष्ट हो जाते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुम मोक्ष चाहते हो या संसार, सोचो। जवानी के इसको दृष्टांत से हम समझ सकते हैं कि जैसे कांटा लग जाए किसी को या पांच लग जाए, कैसे निकलते हैं? सुई से निकलते हैं, तो सुई जो है वो पुण्य है और कांटा जो है वो पाप है। लेकिन सुई को चुभा कर नहीं रखता, इसी प्रकार पुण्य को पकड़ नहीं रखता।
Yeah.